वो हम सब लोगों के लिए बड़ी सबक आमोज भी है, और ऐसी है कि उसको आदमी मांगता ही रहे। उसके अल्फाज ये हैं, اللهم إني أسألك حبك وحب من ينفعني حبه عندك پہلا حصہ اس کا یہ ہے، دوسرا حصہ پھر بعد میں عرض کروں گا انشاءاللہ. تو دعا یہ فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا اللہ مجھے، میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں، یعنی آپ کے میں دل سے آپ سے مانگتا ہوں کہ آپ مجھے اپنی محبت عطا فرما دیجئے، اور اس کی محبت بھی جس کی محبت آپ کے نزدیک میرے لیے مفید ہو. تو پہلے دو جملے ہیں، اصل تو اس میں پہلے ہی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما دیجیے. اور مانگ کون رہا ہے؟ نبی کریم سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ تبارک و تعالی سے ان سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی اور نہیں ہوگا. وہ بھی یہ دعا فرما رہے ہیں کہ مجھے اپنی محبت عطا فرما دیجیے، یعنی جتنی ہے اس کو اپنے لیے گویا کافی نہیں سمجھ رہے، بلکہ آپ مجھے اور دیجئے اور دیجئے اور دیجئے اپنی محبت. اور آپ نے تو مانگی ہی ہے، لیکن حقیقت ہمیں سبق دیا گیا کہ جب میں مانگ رہا ہوں تو تم بطریق اولا تمہیں چاہیے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو کہ یا اللہ مجھے اپنی محبت دے دے. اور یہ محبت مانگنا در حقیقت کنجی ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی زندگی گزارنے کی. کیوں؟ اس واسطے کہ محبت ایسی چیز ہے جو انسان کے لیے بڑی سے بڑی مشکل کو آسان کر دیتی. مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مولانا رومی یا مولانا جامی، کہ از محبت تل خاشینی شبت، محبت سے جو کڑوی باتیں ہیں وہ بھی میٹھی ہو جاتی. جس سے محبت ہو جاتی ہے تو اس محبت کے راستے میں بندہ جو ہے وہ بڑی سے بڑی مشقت اٹھا لیتا ہے. اب دیکھو کہ جو عشق مجازی کرنے والے لوگ جن کے بارے میں مشہور ہے، فرحاد اور شیریں، تو فرحاد جو ہے اس نے جوئے شیر لگانے کے نکالنے کے لیے اپنی ساری توانائی صرف کر دی. اب کوئی نہر کھودنا ایک آدمی کے لیے، لیکن اس نے جب تھی محبت، اگرچہ وہ محبت مجازی تھی اور اس کی وجہ سے اس نے نہر کھودنے کا بیڑا اٹھا لیا، آخر کار جو ہے پھر اسی تیشے سے خود قتل بھی کر لیا اپنے آپ کو، اعوذ باللہ. خیر، تو محبت ایسی چیز ہے جو فرماتے ہیں از تل محبت تلخا شیریں شبت، محبت سے تلخ چیزیں بھی کڑوی چیزیں بھی میٹھی ہو جاتی. ایک ماں کو دیکھو، اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے نا، تو رات کو جاڑا پڑ رہا ہے، سردی کا موسم ہے، اور اس میں بچے نے پیشاب کر دیا اور کپڑے خراب ہو گئے तो उसी में कितनी भी सर्दी लग रही हो, कितनी भी मुश्किल हो रही हो, जाके वो कपड़े धोएगी उसके, और उसमें सर्दी भी बर्दाश्त करेगी, जाड़ा भी बर्दाश्त करेगी, और धोने की तकलीफ भी बर्दाश्त करेगी, सब कुछ करेगी। कोई उससे कहे कि यार इस बच्चे ने तुम्हें मुसीबत में मुबतला कर रखा है, तो यह बच्चा मैं ले लेता हूँ, यह कि इस बच्चे ने तुम्हें दिन रात सारी रात जागता है, सारी रात तुम्हें जगाता है, रोता है, पीटता है, और तो क्यों तमन्ना करती हो औलाद की, मैं ले लेता हूँ, या ले या इसको दुआ करो कि अल्लाह में ऐसे नजाती दे दे। करेगी कोई माँ? वो कह के 1000 मुसीबतें बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन ये बच्चा नहीं मुझे मुझसे कुछ जुदा कर सकता। शौहर से भी अगर तलाक हो जाए और अलहदगी हो जाए, तो वो 100 जतन इस बात के होंगे कि किसी तरह बच्चा मेरे पास रहे, रोए चिल्लाए, तकलीफें पहुंचाए, लेकिन रहे मेरे पास। क्यों? इसलिए कि मोहब्बत हो गई उसके साथ। तो मोहब्बत जो है वो कड़वी चीजों को भी मीठा बना देती। कोई आदमी को अगर फर्ज करो जो मुलाजिम है कहीं, तो और ऐसी जगह मुलाजिम है कि बस सवेरे उठना पड़ता है और नींद आ रही हो, सुस्ती आ रही हो, परेशानी हो रही हो, लेकिन जाएगा और मशक्क़त उठाएगा, उसमें बाद औकात बहुत मेहनत भी करनी पड़ेगी, जज्बात की कुर्बानी भी देनी पड़ेगी। मुझे ख़ास तौर यहाँ इतना ज़्यादा शायद ना हो, लेकिन जो मग़रिबी मुल्क हैं उनमें कई बहुत से लोगों ने मग़रिबी मुल्कों में बताया कि हमारी अपने औलाद से हफ्ते हफ्ते मुलाकात होती है। क्यों? इसलिए कि सुबह उस वक्त जाते हैं बच्चे सो रहे होते हैं, और रात उस वक्त आते हैं जब बच्चे सो जाते हैं, तो बच्चों से बात करने की भी नौबत नहीं आती, लेकिन बर्दाश्त कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि पैसे से मोहब्बत हो गई, यह है कि भाई पैसा मिलेगा, तनख्वाह मिलेगी, तो उस तनख्वाह की मोहब्बत में ये सारी मशक्क़तें झेल रहे हैं। आप देखो कि यानी अल्लाह ताला ने अजीब निज़ाम बनाया है कि कुल हिज्ब में वालदेहिम फरिहून, बेशुमार काम करने वाले हैं वो हर एक अपने काम में मस्त है। कोई आदमी अगर ये सोचे कि मैं अगर कोई पेशा इख्तियार करना चाहूँ, मैं कोई अपने पैसे कमाने का कोई रास्ता इख्तियार करना चाहूँ, तो कभी सोचेगा भी नहीं कि मैं ये काम करूँ, लेकिन हैं, कर रहे हैं लोग, और उसी में मज़ा है उनको। हमारे उस्ताद एक उस फरमाया करते थे कि ये जो जमादार होते हैं, अब जमादार का जो काम है, अगर आदमी सोचे कि मैं ये पेशा अख्तियार रोज़ी कमाने के लिए जमादारी करूं, तो वो किसी के जहन में भी नहीं आएगा कि भाई है ये पेशा अख्तियार करूं पैसा कमाने के लिए। मजदूरी कर लेगा, कुछ और कर लेगा, लेकिन जमादारी नहीं करेगा। लेकिन जमादार के दिल में अल्लाह तबारक व तआला ने ये डाल रखा कि तू यही काम कर। अब वो हमारी ज़रूरतों की खातिर, तो अल्लाह ताला ने उसके दिल में ये डाल दिया कि इसी में मज़ा है तेरा, इसी से मोहब्बत है तुझे। तो हमारे एक उस्ताद फरमाया करते थे कि वो जो जमादार होते हैं जब आपस में जमा होते हैं, तो उनमें मुफाखरत इस बात पर होती है कि तूने 10 घर कमाए, मैंने 20 घर कमाए। तो मफाखरत इस पे हो रही है कि तूने 10 घर कमाए और मैंने 20 कमाए, इस पे फख्र कर रहा है कि मैंने गंदगी ज़्यादा उठाई, तूने कम उठाई। तो कुल हिज्बिन बिमा लदैहिम फरिहून, अब उसके दिल में अल्लाह ताला ने डाल दिया ये कि बस तेरा काम यही है, इसी में तेरा मज़ा है, इसी में तेरी तेरी आमदनी है, इसी में तेरी फख्र की बातें हैं, उसके दिल में डाल दिया। तो अगर न डालते अल्लाह मियाँ, बताओ कि अगर किसी के दिल में ये बात न डालते कि भाई तुम ये सफाई का काम किया करो, वो क्या, मैं सफाई क्या करूं, मैं पत्थर ढो लूंगा, वो मैमारी कर लूंगा, मैं इमारतें बनाने की मुलाजमत कर लूंगा, मगर ये गंदगी धोना मेरे बस का, हर एक आदमी सोचता है ना। तो बताओ क्या होता, जरूरतें हमारी खत्म हो जाती हैं, हम किसी काम के ना रहते। तो लेकिन अल्लाह ताला ने डाल दिया उनके दिल में, और हर पेशे का ये हाल है, हर पेशे का ये हाल है कि उस पेशे में अगर आज सोचें कि भाई हम कौन सा पेशा अख्तियार करें, बहुत से रास्ते खुले हुए हों, तो उस पेशे का ख्याल ही नहीं आएगा कि मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन अल्लाह ने उसके दिल में डाल दिया। एक की ज़रूरत दूसरे के साथ इस तरह वाबस्ता फरमा दी कि दुनिया का कारोबार चल रहा है। कोई कॉन्फ्रेंस हुई थी, आलमी कॉन्फ्रेंस या मुल्की कॉन्फ्रेंस, जिनमें तय किया गया हो कि भाई ये आदमी जो है वो मैमार बनेगा, ये दर्जी बनेगा, ये जो है सुनार बनेगा, और ये जो है वो तालीम देगा। कोई कॉन्फ्रेंस करी हुई थी जिसमें आपस में तय किया गया हो, कौन है जो दिल में ये डाल रहा है, इस तरह डाल रहा है कि हर एक की जरूरत पूरी हो रही है। नहनु कसमना बैनहुम मईशतहुम फिल हयात दुनिया, कुरान फरमाता है हमने उनके लिए रोजगार अपने रोजी के साथ जो है हमने तकसीम किए हैं उनके दरमियान, फिल हयात दुनिया, बरफाना बादहुम फौका बादिन दराजात, और उनके दरमियान दर्जे भी एक दूसरे के ऊपर बुलंद कर दिए हैं, किसी का कम किसी का ज्यादा, लियत्तखिद बादहुम बादन सुखरिया, ताकि उनमें से लोग कुछ लोग दूसरे लोगों से काम ले सकें। अगर काम ही ना ले सकते, किसी के भी कोई भी राजी ना होता कि मैं ये काम कर मुझे ये काम करना है, तो दुनिया का कारोबार ठप हो जाता। जिन लोगों ने अपने हाथ में लेने की कोशिश की थी ये काम, जो उसको मंसूबा बंद मईशत कहते हैं, प्लान्ड इकोनॉमी यानी इश्तराकियत, उन्होंने ये कहा था कि चलो हम कराते, हम मंसूबा बनाते हैं, हम बताएंगे कौन सी ज़मीन पे क्या उगेगा, फिर कौन सी जगह ज़मीन पे क्या उगेगा, और कौन से आदमी किस फैक्ट्री में काम करेगा, कौन सा किस फैक्ट्री में काम करेगा। 70 साल तजर्बा कर लिया जबर इस्तेबदाद के साथ, आखिर में फेल हो गए, नहीं कर सके, धड़ाम से आ गिरा पूरा पूरा महल इस तराकियत का, क्योंकि अल्लाह का काम उन्होंने अपने हाथ में लेने की कोशिश की थी। तो यह हो गया, अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम बना दिया है आलम का, दुनिया का, कि अगर गौर करो तो अजीब कुदरत खुदावंदी का मुजाहरा नज़र आता है, हिकमत बालिगा का नज़र आता है, कि अल्लाह तबारक व ताला ने तकसीम कर दिए हैं काम। किस तरह तकसीम कर दिए, दिल में डालकर, दिमाग में डालकर कि तू ये काम कर, तू ये काम कर। तो ये सारी मनसूबाबंदी इस तरह हो जाती है। हमारे हज़रत वालिद माजिद रहमतुल्लाह फरमाते थे, ये जो ख़ानदानी मनसूबाबंदी कहते हैं ना लोग, तो ख़ानदानी मनसूबाबंदी का मतलब ये है तरक़ीक़त, के जो खुदा का काम है वो अपने हाथ में ले लो, समझे, कि आबादी हम फैसला करेंगे कितनी आबादी होगी कितनी नहीं होगी। तो ये क्या, ये अल्लाह ताला का काम है, तो वो करता है, क्या करता है कि ज़रूरत के मुताबिक अल्लाह तबारक व ताला पैदा करते हैं चीज़ें, जितनी ज़रूरत होती है उतनी पैदा करते हैं। और ये हज़रत वाली साहब ने फरमाते थे, आज जिन लोगों ने तो खुद मंज़र आप लोगों ने शायद देखा ही ना हो, जब हम हिंदुस्तान में रहते थे तो जो है गली गली गायें फिरती थी, हिंदुओं ने बुतों के नाम पर छोड़ी हुई थी गायें, तो वो साहिबा जिनको कहा जाता है कुरान शरीफ की इस्तलाह में, तो गली गली गायें फिर रही होती थी, आज़ाद आज़ाद आज़ाद, क्योंकि बुतों के नाम पर उन्होंने छोड़ रखा था उनको। तो क्या हुआ कि बाद में इन्होंने पाबंदी आयद कर दी गाय ज़बह करने पर, इंडिया में अब भी है कि गाय नहीं ज़बह हो सकती। तो अगर गाय की ज़बह पर पाबंदी लगाई, तो वो जो हज़ारों लाखों गायें फिर रही थी, वो कहीं अगर जब पाबंदी लगाई तो फिर उनका बीज मारा जाना चाहिए था, और उसके बाद वो ख़त्म हो जानी चाहिए थी, ज़रूरत के मुताबिक भी बाजी नहीं रहती। लेकिन उनकी तादाद में अगर इजाफा होता तो सारे इंडिया में गायें गायें होती, समझे आप। जब पहले भी ज़बिया होता था लेकिन अब गायें गायें होती सिर्फ। तो लेकिन जब उन्होंने उसको बंद कर दिया तो पैदावार भी बंद हो गई, उसकी पैदावार भी बंद हो गई। पहले ज़माने में ये जो आज पेट्रोल है या तेल है ना, ये पहले ज़माने में डामर जो तारकोल होता था, ये सिर्फ इस काम आता था कि ऊँटों को, ऊँटों की बीमारी दूर करने के लिए उसकी मालिश की जाती थी, ये तारकोल जो होता है। तो लिहाजा जितनी ज़रूरत थी उतनी तारकोल पैदा होता था। जब आज जिंदगी का सारा काम पेट्रोल पे आ गया तो देखो ज़मीन ने खजाने उगल दिए, यहाँ पेट्रोल निकल रहा है, वहाँ पेट्रोल निकल रहा है, वहाँ पेट्रोल निकल रहा है। तो इम मिन शैइन इल्ला अंदना खज़ाइनुहु वमा नुनज़िलुहु इल्ला बिक़दरिन मालूम, के हर चीज़ के ख़जाने हैं हमारे पास लेकिन हम उतारते उतना ही है जितनी की ज़रूरत होती है, इल्ला बिक़दरिन मालूम। तो तुम अपने खुदाई का नाम का काम अपने हाथ में लेना चाहते हो कि वो तुम फैसला करो कि भाई कितनी पैदावार होनी चाहिए कितनी नहीं होनी चाहिए, कितने आदमी पैदा होने चाहिए कितने नहीं होने चाहिए। तो इसलिए जो निज़ाम अल्लाह जल्ला जलालुहु ने बनाया है, इंसान की ज़रूरत के मुताबिक हर चीज़ पैदा होती है और उसकी ज़रूरत के मुताबिक जहाँ उसका इस्तेमाल ना हो तो ख़त्म हो जाती। कुएँ को जब तक पानी लेते रहोगे उससे कुआँ चलता रहेगा, पानी लेना छोड़ दो खुश्क हो जाएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो निज़ाम ये बनाया है ऐसा बनाया है कि हर एक को किसी काम पर लगा दिया और ज़रूरतें एक दूसरे की उससे पूरी फरमा दी। वो काम कर रहा है बावजूद के देखने में मशक्क़त उठा रहा है, तकलीफ़ उठा रहा है, परेशानी उठा रहा है, लेकिन उसे उस काम से मोहब्बत हो गई है और उस काम के ज़रिए जो पैसा मिलने वाला है उससे मोहब्बत हो गई है। तो अज़ मोहब्बत तलखा शीरी शब्द मौलाना फरमाते हैं कि मोहब्बत से ही तलख चीज़ें जो हैं वो मीठी हो जाती हैं। तो इसलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ मांग रहे हैं और हमें मांगने की तलकीन फरमा रहे हैं कि या अल्लाह अपने फजल व करम से हमें अपनी मोहब्बत अता फरमा दे। जब मोहब्बत हो जाती है अल्लाह ताला से तो फिर गुनाहों से भी नफरत हो जाती है। जब उस खालिक से मोहब्बत हो गई, उस मालिक से मोहब्बत हो गई, तो उसको मासियतों उसके नाफरमानियाँ तो उससे भी मोहब्बत हो और इससे भी हो, ये तो नहीं हो सकता। अगर मोहब्बत उससे है तो फिर गुनाहों से मोहब्बत नहीं होगी। इसलिए अगर वो हासिल हो गई, अल्लाह ताला हम सबको अपने फजल करम से अता फरमा दे, वो हासिल हो गई तो फिर सब कुछ मिल गया, फिर सब कुछ मिल गया, फिर हयात तय्यबा मिल गई और जन्नत मिल गई, आखिरत मिल गई और सबसे बढ़कर उसकी रजामंदी मिल गई, उसकी खुशनुदी मिल गई। तो मोहब्बत है असल चीज़। एक वो हज़रत हकीमुल उम्मत क़र्रा सल्लल्लाहु ताला सिर्रहु का एक वाज़ है तरीक़ुल कलंदर, बड़ा अजीब वाज़ है। तो वो भी कहा था हज़रत ने, वो वाज़ किया था शाबू अली कलंदर के मज़ार के करीब एक मस्जिद थी तो वहाँ पर हज़रत का बयान हुआ था। तो उसका से उसका नाम भी तरीक़ुल कलंदर लिखा। तो उसको ज़रहक़ीक़त एक फ़ारसी शेर की तशरीह है, फ़ारसी शेर यह है, सनमा रहे कलंदर सजद गरनुमाई के दराज व दूर देदम रहे रहो रस्म पारसाई। कह रहा है अपने महबूब से यानी अल्लाह ताला से कि अल्लाह मुझे कलंदरी वाला रास्ता दे दे, दिखा दे, अगर आप मुझे कलंदरी का रास्ता दिखा दें, यानी वो मुझे अता हो जाए, तो ये मेरे ऊपर बड़ा एहसान होगा। क्योंकि के दराज और दूर दीदम रहो रस्म पारसाई, के पारसाई यानी ये जो जोहद और जो खुश्क आकाम के ऊपर चलने वाला रास्ता है, ये तो बड़ा लंबा रास्ता है। ये करो ये ना करो, ये करो ये ना करो, इस तरह करो, नहीं करोगे तो ये हो जाएगा और ये करोगे तो क्या हो जाएगा, बड़ा लंबा रास्ता है। तो हर चीज़ कदम पे, हर कदम पर जो है आदमी जो है वो इस चक्कर में पड़ा रहता है कि भाई ये जायज़ है कि नाजायज़ है, ये हलाल है कि हराम है, ये सुन्नत है वाजिब है, ये फ़र्ज़ है क्या है। तो ये तो बड़ा लंबा रास्ता है कि दराज व दूर दीदम रहो रस्म पारसाई। पारसाई का जो तरीक़ा है नेकी का, वो तो बड़ा लंबा है। तो मुझे कोई ऐसा कलंदरी रास्ता बता दीजिए कि मुझे आप तक पहुंचा दे, बस शेर यह है। अब बज़ाहिर तो यह शेर जो है यह गुस्ताखी की सी बात मान लगती है कि भाई मुझे शरीयत का रास्ता जो है वो बहुत मुश्किल लग रहा है, और वो रास्ता अगर इख्तियार करूँगा तो बड़ा लंबा रास्ता हो जाएगा, तो मुझे कुछ कलंदरी रास्ता बताइए। तो हज़रत ने इसकी तफसीर की है उस बात, और ख़ुलासा उसका यह है कि दर हकीकत वो कलंदरी जो मांग रहा है वो भी इस रास्ते को आसान करने के लिए मांग रहा है। यह नहीं है कि ज़ोहद व तक़्वा का रास्ता और पारसाई का रास्ता ये छोड़कर मैं कोई कलंदरी का रास्ता इख्तियार करूँगा, जैसे जाहिल पीर करते हैं कि भाई ये तो जो मौलवियों का इस्लाम और है और पीरों का और है, समझे आप, तो ये तो जाहिलों वाली बात है। तो लेकिन वो कह रहा है कि अल्लाह बहुत लंबा नज़र आ रहा है मुझे रास्ता, ये कैसे तय करूँगा, इसको तय करने के लिए मुझे कलंदरी दे दीजिए। तो कलंदरी क्या है? अल्लाह ताला की मोहब्बत। तो मोहब्बत दे दीजिए तो फिर ये रास्ता जो है मेरे लिए कुछ भी नहीं होगा, रास्ता आसान हो जाएगा जब मोहब्बत मिल जाएगी आपकी। जैसे अगर देखो कुरान शरीफ खुद कहता है कि माँ जो है वो हमलहु फिसालहु सरासुन शारा हमालतु कुरहन व बदातु कुरहा, बच्चे को पेट में लेती है तो परेशानी से लेती है, मुसीबत से लेती है, और पैदाइश होती है तो तकलीफ कितनी तकलीफ से होती है, पैदाइश के बाद जो उसकी परवरिश होती है कितनी तकलीफ दे होती है। तो दराज़ो दूर है कि नहीं रास्ता, लेकिन उसके लिए क्यों आसान हो जाता है? मोहब्बत हो गई, उस मोहब्बत से सारा रास्ता आसान हो गया, हमल भी आसान और छोड़ना भी आसान, और दूध पिलाना भी आसान और छुड़ाना भी आसान, और सारी क्यों? मोहब्बत। तो वो ये कह रहा है, कहने वाला, कि अल्लाह है तो लंबा चौड़ा रास्ता बहुत, लेकिन इसको आसान करने का रास्ता जो है वो कलंदरी रास्ता है। कलंदरी रास्ता क्या है? मुझे आपसे मोहब्बत हो जाए, मोहब्बत हो जाए तो सब कुछ आसान हो जाएगा। और मोहब्बत कैसे होती है? वो यानी खुलासा ये है सारा कि जो मांगा जा रहा है मोहब्बत, क्यों मांगी जा रही है? इसलिए मांगी जा रही है कि हमारी ज़िंदगी दुरुस्त हो जाए, अल्लाह ताला के अहकाम के ताबे हो जाए, और हमारे लिए दीन पर चलना, शरीयत पर चलना हमारे लिए आसान हो जाए। आज तो हमारे ऊपर मोहब्बत बसी हुई है दुनिया की शोहरत की, दुनिया की दौलत की, दुनिया के फैशन की, दुनिया के अच्छा और बुरा कहने की। यूं करेंगे तो दुनिया अच्छा कहेगी, यूं कहेंगे तो बुरा कहेगी। दुनिया क्या कहेगी कि मैं अपनी शादी में नाच गाना करूं? अगर ना करूं दुनिया क्या कहेगी? तो मोहब्बत किसकी बसी हुई है? दुनिया की और दुनिया वालों की। अगर अल्लाह की मोहब्बत बसी हुई होती तो नाच गाने से नफरत हो गई होती, जो मेरे मालिक को पसंद नहीं है तो मैं कैसे पसंद करूं। और ये जो बात है कि भाई अल्लाह ताला की मोहब्बत, जो जो इंसान अपने नफ्स से लड़ता है, नफ्सानी ख्वाहिशात से लड़ता है, तो उतनी ही अल्लाह ताला की मोहब्बत कल्ब में समाती है। जो 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 पढ़ेगा, जो जो इंसान करेगा, और ये इस तरह होगा कि मसलन एक ख्वाहिश पैदा हुई जो गुनाह की है, उस वक्त में तो तबीयत में बड़ी मशक्क़त मालूम होगी उससे बचने की, लेकिन अगर एक मरतबा उस ख्वाहिश पर हथौड़ा चला दिया एक मरतबा, तो उतनी ही मोहब्बत दिल में आ जाएगी। समझे ना, ये जो इंसान के दिल में ख्वाहिशात पैदा हो रही है, यह करूँ वो करूँ, नज़र को गलत इस्तेमाल करूँ, और जो है अपने ज़बान को गलत इस्तेमाल करूँ, गीबतें करूँ, झूठ बोलूँ और फलां काम करूँ, तो ये सारी ख्वाहिशात जो है, जब एक मरतबा तुमने तय कर लिया कि मुझे अल्लाह के लिए यह क़ुरबान करनी है, तो जब क़ुरबान करोगे तो उसी नस्बत से मोहब्बत आती जाएगी दिल में, और कसरत ज़िक्र से आएगी, अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र कसरत से करने से आएगी, ज़बान से, दिल से अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने से आएगी, अल्लाह ताला की के साथ ताल्लुक़ बढ़ाने से आएगी। तो जब क्या होता है कि एक शुरू बंदे में थोड़ी ना वल्लज़ीना जाहदू फीना में थोड़ा सा मुजाहदा तो करना पड़ता है, ठीक है, लंबा नहीं चाहिए, थोड़ा ही सही, लेकिन थोड़ा सा मुजाहदा करोगे तो क्या होगा कि जितना तुमने नफ्सानी ख्वाहिशात को मारा उसकी जगह अल्लाह ताला की मोहब्बत आ गई। अल्लाह अकबर। ये जो जब चोटें आदमी मारता है थोड़ी थोड़ी अपने नफसानी ख्वाहिशात पर, तो फिर अल्लाह तबारक व ताला की तजल्लियात आती हैं। ये जो हदीस में आया ना कि जब एक मरतबा फ़र्ज करो कि बदनज़री करने को दिल चाह रहा था और बंदे ने अल्लाह की खातिर अपनी नगाह को बचा लिया, तो हदीस में आता है कि उसको ऐसी लज्जत अल्लाह ताला अता फरमाएंगे कि जो उस बदनजरी के लज्जत से हजार दर्जा बेहतर हो। जब एक मरतबा उसकी लज्जत जो है वो बदरजहा ज्यादा होगी, जैसे खारिश का मरीज होता है ना तो खुजाने में लज्जत आती है ना, तो कहते हैं दुनिया में दो ही चीज़ों में मज़ा है, एक खाज में एक राज में। तो ख़ारिश, ये गुनाह की जो लज्जत है वो क्या है, ख़ारिश, समझे ना, ये ख़ारिश की लज्जत है, और अगर जितना खुजाओगे उतना ही मज़ा भी आएगा, आगे तकलीफ भी होगी, समझे ना। तो और अगर ज़रा थोड़ा सा अपने आप को रोक लो, भाई खुजाना नहीं है और ज़ख़म हो जाएगा यहाँ पर, तो क्या होगा कि फिर रफ्ता रफ्ता वो ख़ारिश भी ख़त्म हो जाएगी। तो इसी तरह गुनाह की लज्जत है, तो जब अल्लाह के लिए कोई छोड़ता है उसको तो फरमाया कि उसकी लज्जत कहीं ज़्यादा है। हज़रत हमारे शेर सुनाया करते थे बहुत कसरत से, हज़रत वाला, कि ये कह के कासा साज ने प्याला पटक दिया। कासा कहते हैं प्याले को, कासा साज जो प्याला बनाता है, तो ये कह के कासा साज ने प्याला पटक दिया, अब और कुछ बनाएंगे इसको बिगाड़ के। दिल का जो क्या प्याला है, जब उसको पटक दिया तो अब वो प्याला जो है वो कुछ और बनेगा। ये जो इकबाल का मशहूर शेर है, न बचा बचा के तो रख इसे, कि ये आयना है वो आयना, जो शकस्ता हो तो अजीज तरह निगाह आयना साज में। ये दिल को कहते हैं, दिल की ख्वाहिशात को बात कर रहे हैं, कि न बचा बचा के तू रख इसे, यानी दिल की ख्वाहिशात को बचा बचा के ना रख, कि ये आयना है, वो आयना, ये दिल जो है वो आयना है, कि शकस्ता हो तो अजीज तरह निगाह है आयना साज में, जितना टूटेगा ये दिल उतना ही आयना बनाने वाले की निगाह में ये महबूब होगा। न बचा बचा के तू रख इसे, कि ये आयना है वो आयना, कि शकस्ता हो तो अजीज तरह निगाह है आयना साज में। और मैंने भी एक शेर इस पे कह दिया था कि दर्दे दिल दे के मुझे उसने ये इरशाद किया, दर्दे दिल दे के मुझे उसने, दर्दे दिल से मुराद ये है कि वो ख्वाहिशात को दबाने से जो तकलीफ हुई, समझे ना, दर्दे दिल दे के मुझे उसने ये इरशाद किया, अब हम इसी घर में रहेंगे जिसे बर्बाद किया। दर्द दिल दे के मुझे उसने ये इरशाद किया, हम इसी घर में रहेंगे जिसे बर्बाद किया। तो बर्बाद तो किया ख्वाहिशात से, निकाल दिया ख्वाहिशात नफ्स को उससे, तो अब बारी ताला फरमाते हम रहेंगे इसमें। इन्ना अल्लाह माल मुनकसिरती कुलूबुहुम, अल्लाह ताला उनके साथ है जिनके दिल टूटे हुए, दिल टूटे हुए यानी लोग सिर्फ इस बात से नहीं कभी हादसा पेश आ गए दिल टूट गया, बल्कि उन्होंने तोड़े उस दिलों को, तोड़ा किस तरह तोड़ा, कि अल्लाह के मर्जी के खिलाफ जो काम हो रहे थे उनसे उसने बचाने की कोशिश की। तो जब ये करता है ना बंदा, शुरू करता है ये, तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से मदद होती है, हम इसी घर में रहेंगे जिसे बर्बाद किया, फिर वो आकर वहां पर उनकी तजल्लियात जो हैं वो कल्ब में समाती हैं। तो ये है मोहब्बत। अब हासिल कैसे हो, तो एक तो बात यह है जो मैंने अर्ज कर दी कि थोड़ा सा तोड़ो इसको, ज़बरदस्ती तोड़ के देखो, तो ये तोड़ के कुछ और बनेगा। तो एक तो यह है, दूसरी बात यह कि अहले मोहब्बत की सोहबत, अहले मोहब्बत की सोहबत, के जिनके दिल अल्लाह की मोहब्बत से आबाद हैं, अल्लाह ताला ने उनको अपनी मोहब्बत से आबाद फरमाया, उनके पास बैठोगे ना तो बैठ के उनकी मोहब्बत की गर्मी तुम्हारी तरफ भी मुंतकिल होगी। तो ये पास बैठना, सिर्फ बैठो, फिर और भी कुछ नहीं, सिर्फ बैठो भी, सिर्फ साथ भी चलो, साथ में भी रहो, तो ये सोहबत की नतीजे में उनके दिल में जो गर्मी है वो तुम्हारी तरफ भी आती जाएगी। बिजली का करंट नजर आता है कहीं, बिजली का करंट नजर आता है कि भाई स्विच खोला और बिजली आ गई, कहाँ से आ रही है, पावर हाउस से आ रही है, किस तेजी के साथ आ रही है, नजर कुछ भी नहीं आ रहा कि आ क्या रहा है, तार नजर आ रहा है, तार नजर आ रहा है बस, बाकी उसमें जो करंट है वो नजर नहीं आता। तो इसी तरह अल्लाह वालों की सोहबत, ये सोहबत जो है तार है, समझे ना, वो तार, यहां वो तार है जो तार भी नजर नहीं आता। लासिल की कुवतें भी तो होती हैं ना भाई, वायरलेस कुवतें भी होती हैं ना, तो वायरलेस है लेकिन वो नजर कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन करंट आ रहा है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहा था, ना आप मुझसे बात कर रहे थे, ना मैं आपसे नहीं कर ना मैं आपसे कर रहा था, मगर जा रहा हूँ साथ, समझे। तो क्या हो रहा है कि वो जो वायरलेस कनेक्शन है वो जारी है। तो अहले मोहब्बत की सोहबत, अहलुल्लाह की सोहबत, वो जब सोहबत की नीयत से होती है, एक तो ये कि चले गए बैठ गए गफलत में, कुछ इरादा ही नहीं है वैसे ही, और एक ये कि इस नीयत से صحبت حاصل کی جاتی ہے، اس نیت سے پاس بیٹھا جاتا ہے کہ کچھ ہماری طرف منتقل ہوگا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھو، کوئی شیخ، کوئی استاد جو بشر، کسی کو کوئی کچھ نہیں دے سکتا، دینے والا اللہ ہے ہر حالت میں. لیکن اس نے کچھ، ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، اس نے، اس کی سنت یہ ہے کہ کسی واسطے سے دیتے ہیں، چاہے وہ شجرہ طور ہی کیوں نہ ہو، چاہے شجرہ طور ہی کیوں نہ ہو، آگ جلا کے بلایا پہلے، وہیں کہہ دیتے لمیا، وہیں جہاں بیوی بھی پاس تھی اور اس کو سردی بھی لگ رہی تھی، اور وہیں پر کہہ دیتے، آگ جلا دیتے کہ آ گئے ہم، آ جاؤ. مگر آگ جلائی پہلے، تھوڑی سی کوشش اور جد و جہد کرائی کہ وہاں نے ہم نہیں آئیں گے تمہارے پاس، آؤ ہمارے پاس، پھر تو وہاں بھی موجود، وہیں سے آواز دے دیتے. لیکن شجرہ طور کے پاس بلایا اور پھر کہا انی ان اللہ، تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس واسطے اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ کسی واسطے سے دیتے ہیں، چاہے شجرہ طور ہی کیوں نہ ہو. تو یہ اس کی سنت ہے، دینے والے تو ہر حال میں وہی ہیں، کوئی شیخ، کوئی استاد، کوئی پیر، کوئی نہیں کچھ دے سکتا، وہی دیتے ہیں. لیکن سنت یہ ہے کہ کسی واسطے سے دیتے ہیں. تو اس واسطے جب بندہ اس طلب میں جائے گا کہ میں اس نیت سے جائے گا کہ ان کے پاس رہوں گا، تو ان کے پاس جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ عطا فرمایا ہوا ہے، تو وہ ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایک وائرلیس کنیکشن کے ذریعے مجھے دے گا، تو پھر عطا ہو جاتی. تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ صحبت ہے. اب نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تھی، انہوں نے صحابہ بنا دیے، صحابہ کی صحبت تھی انہوں نے تابعین بنا دیے، تابعین کی صحبت تھی تبع تابعین بنا دیے، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا آخر تک. ٹھیک ہے، درجات میں فرق ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں جی آج کہاں جائیں، کوئی ملتا ہی نہیں، نظر ہی نہیں آتا، کس کے پاس جائیں؟ تو حضرت والی صاحب کا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ بھائی جس چیز کی طلب ہوتی ہے وہ مل ہی جاتا ہے. آٹا اصلی نہیں ملتا، نقلی ملتا ہے، تو آٹا کھانا چھوڑ دیا، بھوس کھانا شروع کر دیا، سمجھے؟ اور گھی خالص نہیں ملتا تو کیا گھی کھانا چھوڑ دیا اور گریس کھانے لگے، تو نقلی چیزیں مل رہی ہیں. لیکن پھر بھی جس کو طلب ہوتی ہے نکال لاتا ہے کہ فلاں دکان پہ گھی اچھا ملتا ہے، فلاں دکان پہ جو ہے وہ آٹا اچھا ملتا ہے، اور فلاں دکان پہ مٹھائی اچھی ملتی ہے، تلاش کرتا ہے کہ نہیں؟ اگر اس کو طلب ہوتی ہے اچھے کی تو اچھا مل بھی جاتا ہے. البتہ حضرت یہ فرماتے تھے کہ جو ہے یہ جب خیال آتا ہے کہ بھئی میں اپنی اصلاح کے لیے کسی کی طرف رجوع کروں، تو معیار دماغ میں یہ ہے میں کس نے ہی گہرائی اس میں پستی میں ڈوبا ہوا ہوں، مگر شیخ مجھے جنید چاہیے، جنید بغدادی چاہیے، اور مجھے جو ہے وہ عبد القادر جیلانی چاہیے. حضرت والے فرمایا کہتے ہیں ارے بھائی جیسے روح ویسے فرشتے. تو وہ نہ آج جنید ملے گا، نہ شبلی ملے گا، نہ عبد القادر جیلانی ملے گا، لیکن ایسا ضرور مل جائے گا کہ جس کی صحبت سے تمہیں فائدہ ہوگا. ایک مرتبہ میرے ایک بھائی تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ایک مرتبہ حضرت والد صاحب رحمتہ اللہ علیہ سے فرمانے لگے کہ حضرت بہت دل چاہتا ہے کہ کسی سے اصلاحی تعلق ہو. بچپن کی پرانی بات ہے، یعنی نوجوانی کی. تو मगर यह कि कोई नजर ही नहीं आता। और हजरत वाली साहब रहमतुल्लाह अलैह के सोबत में देखे हुए थे तो इस वास्ते उस मकाम का आदमी नजर नहीं आता था कोई, तो नजर नहीं आता। हजरत ने वाली साहब ने फरमाया ये तकब्बुर निकालो दिमाग से, अपनी मस्जिद के मौजिन के पास जाके बैठा करो, उससे तुम्हें फायदा होगा। तो ये कि भाई हमें चाहिए शेख अब्दुल कादिर जिलानी और जुनाद बगदादी और फलाना, तो ये वो तो मिलेगा नहीं। लेकिन तुम्हारी इस्लाह वो कहते हैं मौजिन के पास बैठोगे उससे फायदा हो जाएगा, कम से कम 5 मरतबा वो अल्लाह का कलिमा बुलंद करता है। आज मौजिन की ऐसे वैल्यू क्यों नहीं देता? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत के दिन सबसे ऊंची गर्दने वाले होंगे कयामत के दिन मुअज्जिनीन। मामूली मत समझा करो जो अल्लाह का कलिमा बुलंद कर रहा है, वो बड़ी नेमत है। वो वही बात है कि उसको पता है कि माशरे में मेरी आजकल कोई कदर कीमत नहीं है। पूछो पता है कि नहीं, जानता है कि मेरे कद्र कीमत नहीं है, लेकिन पेशा वो इख्तियार कर रखा है कि अजान दूंगा, 5 मरतबा अल्लाह का कलिमा बुलंद करूंगा। तो मैं तो समझता हूँ मुझसे 1000 दर्जा अफजल है जो आदमी इस खातिर अपने उसने जो है जाह को, मनसब को, उसने शोहरत को, उसने माशरे के अंदर कद्र कीमत को अल्लाह की खातिर छोड़ा हुआ है, तो उसकी उसके उसकी फजीलत आप क्या समझ सकते हो? दुनिया में वो आप उसको देखते हो कि मामूली सा आदमी फिरता है और उसके कपड़े भी मामूली और अंदाज भी मामूली, लेकिन अल्लाह के यहाँ क्या कदर कीमत है उसकी, वो हम कुछ पहचान भी नहीं सकते। तो इसलिए कहता हूँ कि सबसे जो मोहब्बत का रास्ता है जो आगे शरीयत को आसान करता है, रहो राह है क्या, रहो रस्म पारसाई जिसको कहा है, तो वो उसका पहला मोहब्बत है, मोहब्बत का उसूल है, मोहब्बत का जो है वो, तो वो उसका रास्ता है अहले मोहब्बत की सोहबत, और अल्लाह तबारक व ताला उसके जरिए वो करंट पहुंचाते रहते हैं, पता भी नहीं चलता। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, मैंने एक मरतबा हजरत अपने हजरत से पूछा कि हजरत इतने दिन हो गए आपकी खिदमत में आते हुए, रब्ता का ताल्लुक भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बना रखा है, हाजिरी होती रहती है, तो लेकिन अब मेरी हालत तो वही है जो पुरानी थी, कोई फर्क नजर नहीं आता, वही हालत है। तो हजरत ने फरमाया कि जब तुम छोटे थे, बच्चे थे, तो उस वक्त जब रोजाना अगर नापो अपने आप को कि बच्चे की रोजाना पैमाइश करो भाई आज कितना है और कल कितना था समझे समझे, तो कोई फर्क नजर नहीं आया। एक हफ्ते पहले जैसा था, एक हफ्ते के बाद भी वैसा ही है, एक महीने के बाद भी वैसा ही है, नाप के देखो इंची टेप से समझे, लेकिन देखते ही देखते बड़ा हो जाता है। तो इस तरह अगर नापने की कोशिश करोगे जैसे कि बच्चे को नापते हैं तो मालूम होगा कि मैं तो वहीं खड़ा हूं, लेकिन जो है अल्लाह ताला जिस तरह बच्चे को बड़ा कर देते हैं उसी तरह होते होते ये भी हो जाता है, बशर्ते के लगा रहा, बशर्ते के लगा रहे हैं, बंदा छोड़े नहीं, रास्ता ना छोड़े। तो भाई ये अल्लाह ताला हम सबको अता फरमा दे अपने रहमत से, मोहब्बत जो है ये बस ये कुंजी है, जितनी मोहब्बत बढ़ती जाएगी उतना ही शरीयत से मोहब्बत बढ़ती जाएगी। اور جتنی محبت میں کمی ہوگی اتنے ہی گناہوں کی طرف رغبت ہوگی. جب میں کہہ رہا ہوں نا پہلی مرتبہ ہتھوڑا چلانا پڑتا ہے, یہ اتنی بڑی دولت, محبت والی دولت, یہ ایسے ہی نہیں مل جاتی گھر بیٹھے اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے. الذین جاہدوا فینا, تو حضرت ہمارے حضرت کا ترجمہ یوں کرتے تھے کہ الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, تو فرماتے ہیں کہ جو ہمارے راستے میں تھوڑی سی بھی محنت کرتے ہیں. اور یہ فرمایا کہ یہ جو ہے نا جاہدو, یہ فعل ہے کہ نہیں, اور فعل جو ہے وہ اس میں حدوث ہوتا ہے. تو اس لیے اس سے یہ مطلب نہیں کو بہت لمبی چوڑی محبت مجاہدہ نہیں, تھوڑی سی بھی اگر محنت کرو گے تو فرمایا ہم ہاتھ پکڑ کے تمہیں اپنے راستے پر لے آئیں گے. لنہدینہم سبلنا, تو چلو تو صحیح, تھوڑا سا اس دل کی خواہشات پر تھوڑا سا خنجر تو چلاؤ, اس پر نشتر تو لگاؤ. تو وہ نشتر لگا کے پھر کیا ہوگا, پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت سمائے گی. تھوڑا سا نشتر چاہیے بس, تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق بھی ہو جاتی ہے. بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ تھوڑی سی بھی کوشش, تو پہلی کوشش یہ ہے کہ اہل محبت کی صحبت جتنی بھی مل جائے اس کو اختیار کرنا. دوسری چیز ہے کثرت ذکر, اور کثرت ذکر کے لیے معین ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استحضار. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر سوچنا, مجھے کیا کچھ نواز رکھا ہے میرے مالک نے, ہم سوچتے ہی نہیں, نتیجہ یہ کہ وہ غفلت تاری رہتی ہے. جتنا سوچو گے کس طرح میری آنکھیں کام کر رہی ہیں, کس طرح میرے کان کام کر رہے ہیں, کس طرح میرا منہ کام کر رہا ہے, کس طرح میرے دانت کام کر رہے ہیں, کس طرح مجھے اللہ تعالیٰ میرے پوری جسم میں ایک فیکٹری ایسی لگی ہوئی ہے کہ جو دنیا میں کہیں اس کی نظیر نہیں ہے, نہ بنا سکتا ہے کوئی ایسی فیکٹری, اور چل رہا ہوں میں اس طرح. تو جو کچھ نعمتیں حاصل ہو رہی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے, اس کا استحضار. تو تین باتیں عرض کی میں نے, ایک اہل دل کی صحبت, اور دوسرے کثرت ذکر, اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استحضار. اگر ایک آدمی روزانہ آپ کو صبح کو لا کے انجانا جس کو دیکھا بھی نہیں, وہ تمہارے گھر میں لا کے ساری ضروریات صبح کی سے لے کے شام تک کی ڈال کے چلا جاتا ہے, اور پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں ڈال گیا کیا ہو گیا, اور سارے دن کی تمہاری ضروریات اس نے مہیا کر دی اعلیٰ درجے کی, تو روز جس جو یہ کام کر رہا ہو اس کو دیکھا نہیں, ایسے ڈال کے چلا گیا, وہ پتہ نہیں چلتا کون ڈال گیا, اس سے محبت ہوگی کہ نہیں ہوگی, اگرچہ اس کو دیکھا بھی نہیں, اس سے محبت ہوگی؟ تو وہ تو جتنی بھی لائے گا تو تھوڑی سی لے کے آئے گا, جتنی بھی زیادہ وہ لا کے دے وہ تھوڑی ہی ہوگی. لیکن اللہ جل جلالہ نے صبح سے شام تک جو نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں اور مستقل عطا فرما رکھی, تو اس کو دیکھ کے اس کا تصور کر کے ان سے محبت نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کثرت سے استحضار, جو چیز ملے تو ذرا سوچ کے کھاؤ اس کو, جو چیز ملے جو کوئی فائدہ حاصل ہو ذرا سوچ کے لو اس کا فائدہ کرو, کہاں سے آ گیا یہ میرے پاس, کون کس نے بھیج دیا مجھے یہ, جتنا اس کو سوچو اتنی اس سے محبت ہوگی. تو یہ تین باتیں ہیں, اہل محبت کی صحبت اور کثرت ذکر, چلتے پھرتے ہی صحیح, زبان سے ہی صحیح لیکن ذکر رہے کوئی زبان پہ چلتے پھرتے. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں कि कितना ही बेध्यानी के साथ जिक्र किया जा रहा हो, नफे से खाली नहीं होता। तो कसरत चलते फिरते भाई क्या है, हजार इधर उधर के ख्याल आ रहे हैं, आने दो, जबान जो है वो अल्लाह ताला को याद कर रही है, अल्लाह ताला का जिक्र कर रही है, और अल्लाह ताला की नेमतों को इस्तेज़ार जितना किया जाएगा उतनी मोहब्बत बढ़ेगी। और ये मांगते भी रहो, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बक, ऐ अल्लाह हमें आपकी मोहब्बत, हमें अपनी अता फरमा दीजिए। तो कोई दुश्मनी है हमारे से कि वो ना देंगे? हमारे से दुश्मनी है? मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम। अरे अल्लाह तुम्हें अजाब दे के क्या करेगा, कुरान कह रहा है अगर तुम शुक्रगुजार बनो और ईमान लाओ तो। तो मैं बहरे ये बदगुमानी रखना कि मैं मांगता रहूंगा और मुझे मिलेगी नहीं, ये एक उस सखी दाता के एक दरबार से ये बदगुमानी रखना, ये बंदे की नाशुक्री है। तो मांगो, देंगे वो, ज़रूर देंगे। अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल व करम से हमें इसकी तौफीक अता फरमा दे। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही। www.darsquran.com